خداوند کے جلالی اور عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. اس سے پہلے کہ ہم کلام اقدس میں سے سیکھنا شروع کریں، تین بہت ضروری باتیں جو مسیحی زندگی میں بہت ہی ضرورت کا درجہ حاصل کرتی ہیں، خاص کر ایمانداروں کی زندگی میں. غور سے سنیں. پہلی، جب کبھی بھی خدا کے کلام کو سنیں، کسی سے بھی سنیں، تو اس بات پر غور ضرور کریں کہ جو کچھ سن رہے ہیں وہ کلام اقدس میں سے ہے اور سچ ہے. جو کچھ بھی کلام اقدس میں سے کسی سے بھی سنیں، اسے پرکھیں کہ وہ سچ ہے اور کلام اقدس میں سے ہے. دوسری بات کہ جو کلام سنا رہا ہے، جو آپ تک سچائی پہنچا رہا ہے، کیا اس کو آپ کی روحوں کی فکر ہے؟ کیا وہ واقعہ ہی دلی طور پر آپ سے لگاؤ رکھتا ہے، آپ کی روحانی زندگی کا بوجھ اور ذمہ داری اپنے اوپر سمجھتا ہے؟ تیسری بات، پہلی، جو کچھ سنتے ہیں اس پر غور کریں کہ کلام خدا میں سے ہے اور سچ ہے. دوسری، جو کوئی آپ کو کلام سناتا ہے، کیا وہ آپ کی روح کی قدر کرتا ہے یا وہ صرف آپ تک وہ معلومات پہنچانا چاہتا ہے؟ تیسری، کیا وہ سچ کو جانتا ہے؟ یہ تین باتیں مسیحی زندگی میں بہت ہی ضروری ہے. جب کبھی بھی کلام سنیں، بائبل مقدس میں آیا ہے کہ کلام جو کوئی پڑھتا ہے اسے سچائی کی پرکھ کرنے کا پورا پورا حق ہے. یہی آزادی خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک ایماندار کو دی ہے، اور ہمیں پورا حق ہے کہ ہم جو کچھ سنیں اسے پرکھیں، اور جسے سنیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کیا واقعی ہی وہ ہماری روحوں کے لیے، ہماری روحانی خوراک کے لیے بھوج رکھتا ہے، اور تیسری، کیا وہ کچھ جانتا ہے. آئے ہم خداوند کے حضور جھکیں اور اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لے. جیسے کہ ہمارے معمول کے مطابق پہلا یوحنا اس کا پہلا باب بھی اس کی نامی آیت کے مطابق، کسی طرح کی سوچ، فکر، خیال اور آپ کو بہکانے والی سوچیں آپ کے ارد گرد ہیں، تو ان کو چھوڑ کر صرف کلام اقدس کی طرف اپنا دھیان لگائیں، کیونکہ آپ کی صبح جو شروعات آپ نے کی ہے وہ خداوند کے کلام سے ہے، اور اپنے مخالف کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی صبح کو خراب کرے اور اس برکت کی باتوں کو جو خداوند کے کلام میں سے ہے ضائع جائیں. چند لمحوں کے لیے اپنے دلوں کی حالت کا جائزہ لیں، صرف خداوند کی طرف دھیان لگائیں، بچوں سے مت کھیلیں، ارد گرد کی باتوں پر مت دھیان دیں. خداوند کے حضور جھکیں گے. قادر مطلق آسمانی باپ، تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف ہو تیری سچائی کے لیے. خداوند خدا، جو کچھ بھی ہم تیرے کلام اقدس میں سے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، خداوند خدا، وہ ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا باعث بنے، اور تو ہمارے دل کی آنکھوں کو روشن کر تاکہ تیرا بیٹا یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پائے. یسوع مسیح کے نام میں، آمین. جو بہن بھائی خداوند کا کلام پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ نکالیں افسیوں 2 باب اس کی 11ویں آیت سے ہم 13ویں آیت تک پڑھیں گے. کل ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا تھا پہلی 11ویں اور 12ویں آیت میں سے. آپ کی یاد دہانی کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ نکالیں. پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے رو سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں تم کو نامختون کہتے ہیں، اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سنتلت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ 13 آیت، مگر تم جو پہلے دور تھے اب یسوع مسیح میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ جیسا کہ کل ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھا تھا کہ اب جو کوئی بھی یسوع مسیح میں ہے وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی نسل سے ہے، کسی بھی امت سے ہے، کوئی بھی اس کی ذات پات ہے، وہ مسیح یسوع میں جب ایمان لاتا ہے تو وہ خدا کی خاندان کا، خدا کی فیملی کا کیا بن جاتا ہے؟ حصہ، رکن بن جاتا ہے، اس کا ممبر بن جاتا ہے۔ اور یہ پہلی دو آیات 11 اور 12 آیت، یہاں پر پالوس رسول اس غلط فہمی کو، اس سچائی کو افسس کی کلیسیا پر ظاہر کرتا ہے، اور وہ اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ جو اپنے جسم پر ظاہری ختنے کا نشان لیے ہوئے ہیں، جو ان کی شناخت ظاہر کرتا ہے کہ وہ روحانی ہیں اور وہ پاک ہیں، اور ان تمام وعدوں اور خدا کے وہ جو تمام برکت برے عہد ہیں ان کے حقدار ہیں، تم کو کیا کہتے ہیں کہ تم ان سب سے خارج ہو۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں بڑے واضح طور پر بتاتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں ایک حوالہ، رومیو اس کا 2 باب اس کی 28 آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہ حوالہ، اس حوالے کو آپ کے سامنے بخوب سچائی کو ظاہر کر دے گا کہ در حقیقت پالوس رسول یہاں پر کس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ 28 آیت میں یوں لکھا ہے، رومیو 2 باب، کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ یہاں پر وہ اس سچائی کو بیان کرتا ہے کہ ہماری جو شناخت، ہمارا جسم کا کٹوایا جانا یا کسی طرح کی اور روایت کرنے سے ہم کوئی اچھے یا بھلے یا نیک یا راست باز نہیں ٹھہرتے۔ ہم نے افسیوں 2 باب اس کی 8 اور 10 آیت میں یہ سیکھا تھا کہ ہم جو اس کے گھرانے کے لوگ بنتے ہیں، ہم اگر راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، ہم اگر اس کی ان تمام برکتوں کو پاتے ہیں، اگر ہم روحانی ٹھہرائے جاتے ہیں تو صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث، کیونکہ تم کو فضل ہی سے ایمان کے وسیلہ سے نجات ملی ہے۔ اور یہاں پر پالوس رسول یہی بات بیان کرتا ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ صحیح حقیقی ختنہ اور شناخت یہ نہیں کہ ہم جسمانی یا ظاہری کاموں کو کریں، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسوں کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بھی پالوس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جو تمہیں کہتے ہیں کہ تم خدا سے، ان تمام وعدوں سے، اس کے تمام عہدوں سے، اس کی تمام برکتوں سے خارج ہوں، پالوس رسول پچھلے 2 باب کے پہلی 10 آیاتوں میں اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ اس بات کو کلیسیا تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ تمام برکات، نعمتیں، وہ قدرت، وہ ساری برکت صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث ہے۔ اور پھر اس بات تک پہنچتا ہے، اس سچائی کو ان تک پہنچاتا ہے۔ 13 آیت کو دیکھیں، मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। हर तरह की हदबंदी, वो पर्दा जो हैकल में बहुत मोटा था, वो पर्दा जब खुदावंद यस्सु मसीह ने सलीब पर निजात के काम को तमाम करके कहा कि अब तमाम हुआ, वो पर्दा, वो जुदाई, वो दूरी खत्म हो गई। वहां पर कोई खतना, कोई और हुक्म नहीं रहा, सिर्फ ये हुक्म दिया गया कि खुदावंद यस्सु पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा, तेरा घराना निजात पाएगा। और हम सिर्फ और सिर्फ यस्सु पर ईमान लाने के बायस रासबास ठहरते हैं, रूहानी ठहरते हैं और उसकी फैमिली के, उसके खानदान के लोग बन जाते हैं, उसके बेटियां और बेटे बन जाते हैं। और यहां पर वो कहता है तुम जो पहले दूर थे, वो सारी रूहानी दूरी जो बहुत बड़ा क्या था, बहुत बड़ा जुदाई थी, बहुत गहरी जुदाई थी, बड़ी जुदाई थी इंसान के दरमियान और खुदा के दरमियान, उस दूरी को यीशु मसीह ने अपने खून के वसीला से दूर किया और कहा कि अब तुम उसके खून के वसीला से नजदीक हो। यानी कि वो तमाम आसमानी बरकात हर एक ईमानदार के लिए मौजूद है जैसे ही वो उस पर ईमान लाता है, वो उसका लेपालक बेटा बन जाता है, उसकी रासबाजी उसमें आ जाती है, वो रूहुल कुद्दस की सुकूनत गाह बन जाता है और क्या आसमानी मकामों पर उसके दाएं हाथ, वो तमाम बरकतें उसके हमारे आसमानी अकाउंट में, आसमानी खाता में जमा हैं। हमें यहां पर पालूस रसूल ये हकीकत बयान करता है कि हम जो दूर थे अब उसमें नजदीक हो गए हैं, यानी कि नजदीकी उसकी मानद अब जो मसीह यस्सु में है उन पर क्या है, वो सजा का हुक्म नहीं बल्कि वो नई मखलूक है, वो नए तौर पर पैदा हो चुके हैं। हमें दुनिया के बनाए हुए असूलों और हुक्मों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी, इंसानों की बनाई हुई रस्मों के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि उस जिंदा खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। और हम आगे चल के देखेंगे कि उसने हमें अपना मकदस ठहराया है और चाहता है कि हम जैसे जमीन पर जिंदगी बसर करते हैं दिन ब दिन बाहम उसमें तामीर होते जाएं, ताकि खुदा में खुदा के रूह के वसीला से, खुदा की जो रूह की हम सुकूनत गाह हैं, ईमानदार होते हुए खुदा का मस्कर बढ़ते जाएं। यहां पर इस हकीकत को वो बयान करता है कि हमें हमारा जो दिल का खतना जरूरी है, दिल की तब्दीली जरूरी है और दिल का नए तौर पर बनना जरूरी है, लफ्जी तौरों लफ्जों की खिदमत या इंसानी बनाए हुए उसूलों की खिदमत नहीं करनी, क्योंकि ऐसों की तारीफ ना में भी हो सकता है इंसानों की तरफ से हो, इंसानों के हुक्मों को पूरा करने के बायस, लेकिन खुदा की नजर में उनकी कोई कदर और कीमत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो जो इंसानों में अपनी इज्जत और चौधर चाहते हैं वो अपना अजर पा चुके, आसमान पर उनके लिए कोई अजर नहीं, लेकिन जो रूह में और दिल की तब्दीली यानी कि सोचों का बदलना, सोच का बदलना, सही तरीके से सोचना, पालूस रसूल रोमियो 2:29 उसकी 29वीं आयत में यही बात करता है कि तुम्हारे दिल की तब्दीली यानी के सोच जो हमारे पूरे जिस्म का मेन हिस्सा है उसका बदलना जरूरी है और रूहानी तब्दीली आनी जरूरी है, ना के लफ्जी तौर पर। फिर हमारी तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होगी और इस जमीन पर हमारा जिंदगी बसर करने का मकसद भी यही है कि जो दूरी खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर दूर की है उस दूरी को, जो उसने मिठाई है उस दूरेपन को, उस अलहदगी को, जिसने सुला के बंद में बांधा है, उस सुला के मुताबिक इस जमीन पर उसकी रफाकत में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। उसकी नजदीकी में क्या लिखा है कि मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, नजदीक हो गए हो, बहुत नजदीक, बहुत करीब होना, और उसके बारे में जानने की जरूरत है। और हम किस तरह जान सकते हैं? हर रोज बाइबल मुकद्दस के बारे, बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह के बारे में जानना। और ये बाइबल मुकद्दस क्या कहती है, बाइबल मुकद्दस को क्या कहा गया है, माइंड ऑफ क्राइस्ट, यानी के हमारे पास मसीह की अकल है। ये अकल, ये खुदा ने अपनी सच्चाई हर एक ईमानदार को दी है। आज हमें देखने की जरूरत है कि हम इंसानी असूलों या अपने जज्बातात या अपने आप को खुश करने, आदमियों को खुश करने, या दुनिया की बातों में, या दुनिया के हम शक्ल बनकर दुनिया की मानव जिंदगी गुजारते हैं, या फिर उसकी नजदीकी में जिसने दूरी की दीवार को ढा दिया है उसकी नजदीकी में जिंदगी गुजारते हैं। सादा लफ्जों में इसका मतलब है, सादा लफ्जों में इसका मतलब है कि हम किसकी नजदीकी में जिंदगी गुजारते हैं, मसीह की नजदीकी में जिंदगी गुजारते हैं, या के फिर इस दुनिया की बातों में जिंदगी गुजारते हैं। हमें इस जहां के हम शक्ल बनने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या लिखा है 13वीं आयत में, मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, यानी कि उसकी करीबियत में, उसके साथ एक तअल्लुक, एक रिश्ता। और ये रिश्ता हमें बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो फजल, जो रहमत, जो बरकत तुम पर हुई है, यानी कि जो दूरी की दीवार उसने अपने बेटे के वसीला से गिरा दी है, उस फजल को जाया मत होने दीजिए। और दिल की तब्दीली का होना जरूर है, और ये सिर्फ और सिर्फ किस तरह हो सकता है, बाइबल मुकद्दस। पहला करिन्थियों उसका 2 बाब उसकी 16 आयत हमें क्या कहती है, माइंड ऑफ क्राइस्ट, यानी के हमारे पास क्या है, मसीह की अकल। मसीह की अकल क्या है, खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम जो बख्शा गया है। इसे सीखने की जरूरत है, इसे जानने की जरूरत है, और यही हमारी जिंदगी, यही हमारी जिंदगी का मकसद है, इस जमीन पर जिंदगी बसर करने का। ये मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। इसीलिए मैं लगातार जो खुदावंद का कलाम मुझे मिला है उसे रिकॉर्ड करते जा रहा हूं, ताकि आप तक वो पैगाम पहुंचे। क्योंकि हमारा मुखालफ नहीं चाहता कि हम सच्चाई को जाने। हमारे पास यीशु मसीह की अकल है, जो कि बाइबल मुकद्दस जिसे कहा गया है। आज हमें देखने की जरूरत है कि हमारे पास खुदावंद की बरकत है, फजल है, रहमत है, और सबसे बढ़कर उसके खून के बायस उसके साथ क्या हो गई है, नजदीकी हो गई है, एक तल्लक, उसके साथ रफाकत है। और वो कुदरत और ताकत, जैसे आपको पहले सिखाया कि इंसानी तारीख में, पुराने अहदनामा में हम देख लें, रूहुल कुदस वक्तों के मुताबिक जब खुदा चाहता था तो नबियों को इस्तेमाल करता था, लेकिन आज जो आप उसका मकदस हैं, ये कुदरत और ताकत कब मुहैया हुई, आप इस दिन को 2-3 हफ्ते पहले मनाकर गुजरे हैं। और वो क्या है, यीशु मसीह, क़यामत अल यीशु, ईदे क़यामत अल मसीह, यानी के मुर्दों में से जी उठने के बाद। क्या लिखा है इमाल 1 बाब उसकी 8 आयत में, रूहुल कुद्दस तुम पर नाजल होगा, यानी के हर एक ईमानदार के अंदर वो रूहुल कुद्दस की कुदरत मुहैया है। और ये रिश्ता, ये तलक जो खुदा बाप ने जो दीवार गिराई है, जो दूरी खत्म की है इस जमीन पर, अबलीस को मत मौका दीजिए, वो हर वक्त ये चाहता है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। हमें हर रोज अपने दिल, अपने दिमाग और अपनी जिंदगी की हालत का जायजा लेने की जरूरत है कि हम इस दुनिया के हम शक्ल हैं या के उस नई शक्ल और नई सूरत जो के हमें दी गई है कि अब जो मसीह यसु में है वो नए मखलूक है, हमें उसने नई मखलूक बनाया है, तो हमें इस जमीन पर उसकी कुर्बत में जिंदगी गुजारने की जरूरत है। और वो कुर्बत, वो कुदरत मुहैया है जमीन पर हर एक ईमानदार के लिए। ये कुदरत और ताकत ना के सिर्फ पादरी साहबान के लिए मुहैया है, हर एक ईमानदार के लिए मुहैया है। और इसकी बुनियादी शर्त क्या है? खुदावंद यसु पर ईमान लाओ तो वो रूहुल कुद्दस की कुदरत आपके अंदर सुकूनत करेगी। आप बेशक इलम में कमजोर हैं, लेकिन वो रूहुल कुद्दस की कुदरत और ताकत हर एक को खुदा ने पैमाने में रूह नाप के किसी को नहीं दिया, उसने अपना रूह हर एक को पूरे तौर पर दिया है। हमें जरूरत है कि हम किस तरह रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में जिंदगी गुजारते हैं। पहले शुरुआत में मैंने आपको तीन बातें बताई कि जब भी खुदावंद के कलाम को सुने, गौर से सुने और उससे परखें कि क्या सुनाने वाला आपको बाइबल मुकद्दस में से सुना रहा है, क्या वो सच है। दूसरी बात, क्या वो हकीकी तौर पर आपकी रूहों के लिए अपने दिल में ये बोझ रखता है, आपकी रूहानी खुराक के लिए। और तीसरी बात, क्या वो हकीकी तौर पर बाइबल मुकद्दस को जानता है या फिर अपनी ही बातें बता रहा है या फिर अपने ही मकसद को। आप अपने इस कलीसिया में बहुत से देखेंगे लोगों को, मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो सिर्फ आएंगे, आपका हदिया लिया और बात खत्म। फिर वो आपको नहीं जानते कि आप कौन हैं और आपकी जरूरियात क्या है। बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है बहुत सी गहरी बातों के बारे में, सादा तौर पर बयान करती है। जब आप ऐसे लोगों को अपना रुपया, पैसा, हदिया देते हैं तो आप उनका हौसला बढ़ाते हैं ताकि उनकी गलत तहरीक आपको बेवकूफ बनाए। इसलिए तीन बातों को बहुत ही उम्दा तौर पर याद रखें। बेशक मैं आपको कलाम सुनाता हूं, मुझे भी देखने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस जो आईना है, जो हर एक की तस्वीर साफ तौर पर बयान करती है, इस आईने में देखने की जरूरत है कि क्या मैं जो आपको सिखा रहा हूं वो सच है। अगर वो मेरी तरफ से है या मेरे मुफाद के लिए है तो उसमें से आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे, उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और जो कुछ रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में होगा वो आपके लिए बरकत का बायस बनेगा और आपकी रूहानी तरक्की होगी और आप अपनी जिंदगी में रूहुल कुद्दस के फल को देखेंगे, इस दुनिया के फल को नहीं देखेंगे। पिछले दिनों में हमने सीखा था तरीकी के फल, फिर हमारी जिंदगी में तरीकी के फल नहीं लगेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि कुलसियों पहला बाप हमें क्या बयान करता है। पहले बाप में हमें क्या लिखा है खुदावंद के कलाम में कि जब हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चाल चलेंगे। पहला बाप कुलसियों पहला बाप उसकी दसवीं आयत में क्या लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ो। हमें खुदा की पहचान में बढ़ने की जरूरत है ताकि सारा जलाल यसु मसीह के नाम को मिले। इस आयत को जरूर पढ़ें, कुलसियों पहला बाप उसकी दसवीं आयत को। पालूस रसूल यहां पर उनके लिए ख्वाहिश करता है, उनके कुलसी की कलीसिया के लिए वो भोज रखता है और वो चाहता है कि तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारे उस नेक काम से क्या लगे तुम्हारी जिंदगी में रासबाजी का, तरक्की का फल आए, रूहानी जिंदगी आए और वो जिंदगी का रिजल्ट क्या बने, उसका नतीजा क्या निकले, खुदा की पहचान में बढ़ो। और आपके लिए भी खुदा का मकसद यही है कि आप उसकी पहचान में बढ़ें, तब आप अबलीस के झूठों को समझ पाएंगे। लाखों करोड़ों मसीही कहलाते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस से कोई तल्लक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। ये अलग बात है कि वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन बाइबल कहती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जो पढ़ नहीं सकते उनके पास ये ताकत खुदा ने दी है, उनके लिए ये कुदरत मुहैया की है कि वो सुन सकें। हमें इस जमीन पर खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है कि उसकी पहचान में आगे बढ़ें और हमारी जिंदगियों में उसकी पहचान का फल लगे, ताकि सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। आए हम खुदावंद के हजूर झुकें। कादरे मुतलिक आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरी सच्चाई के लिए। खुदावंद खुदा, सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को बड़ी बरकत दे, और जब ये दोबारा इस कलाम को सुने तो खुदावंद खुदा जो हिस्सा वो नहीं सुन पाए उन तक पहुंचे और उनकी जिंदगियों में कसरत से रूहानी फल लगे, और वो फल इस नतीजा पर पहुंचे कि तेरी पहचान में बढ़े और अपनी खुदावंद खुदा जिंदगी से वो रूहानी कुर्बानी चढ़ाएं जिनके लिए तूने इन सब ईमानदारों को शाही काहिन कहा है। और खुदावंद खुदा वो कुर्बानी तेरे जलाल और तेरी गवाही के लिए हो। सबको बड़ी बरकत दे और आज के दिन में अपनी पाक मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर और हिकमत और दनाई दे, यीशु मसीह के नाम में, आमेन।